अब यहाँ देखिए कि वो मौजू जो हमारा शुरू से चला वो चलता ही जा रहा है, आगे भी आएगा, लेकिन अब बीच में कुछ बातें जो है इबादत से मुतल्लिक हैं। जब भी इंसान सफर पे होता है या हिजरत पे होता है तो रास्ते में कई किस्म के मसाइल आते हैं। इसी तरह के दो मसलों का जिक्र अब आयत नंबर 101 से 104 तक में आएगा। पहला मसला सफर का है अंदर नमाज का, कि नमाज कितनी पढ़ें, थोड़ी पढ़ें कि ज्यादा पढ़ें पूरी, और दूसरी खौफ की बात का। तो इंशाल्लाह हम इसको साथ लेके चलेंगे। देखने में लगता है बिल्कुल टॉपिक खुद ही बदल गया, लेकिन टॉपिक नहीं बदला, बल्कि सफर ही के नाते से अब कुछ चीजों में से एक चीज। आयत 101, वह इजादर अब तुम फिल अर्दी, और जब तुम चलो जमीन में, फलैसा अलैकुम जनाहुन, तो तुम पर इस पे कोई गुनाह नहीं। किस पे? अन तकसुरु मिनसलाह, के कमी कर लो तुम नमाज में से। तकसुरु का लफ्ज नया है कसर से। कसर किसको कहते हैं? छोटा करने को। ये जो उर्दू में बोलते हैं ना, मेरा कसूर क्या है, वो भी यही लफ्ज है, यानी मैंने क्या कमी की है, व्हाट आई डिड रॉन्ग, ये मानी है। ठीक है, नमाज को कम कर लो। इन खिफ तुम्हें कफरू, अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें नुकसान देंगे, यानी ये कब होगा, जब तुम्हें इस चीज का खौफ आ जाए कि काफिर तुम्हें नुकसान देंगे, क्योंकि इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वन मुबीना, यकीनन ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। तो लिहाजा कभी भी नमाज का वक्त सफर में इस तरह का आ जाए तो उस वक्त तुम नमाज को छोटा कर लिया करो। इस आयत के पीछे एक खास वाक्या है शान नजूल में, मुख्तलिफ आते हैं लेकिन उनमें से एक है, और वो क्या है कि मुसलमान किसी सफर में थे और उस सफर के दौरान जब नमाज का वक्त आ गया तो नमाज के पढ़ने के बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ राय थी, तो उस मौके पे ये आयत नाजिल हुई कि सफर की नमाज को कसर कर सकते हो, कम कर सकते हो। यहां से थोड़ा सा आपको सफर की वजह भी समझ आनी चाहिए। चंद जुमले बोलती हूँ, शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली बात है कि इस्लाम बेमकसद सफर को पसंद नहीं करता। हदीस में सफर को अजाब का टुकड़ा कहा गया है, क्योंकि हकीकत है ना, इंसान की जान को भी खतरा होता है, माल को खतरा होता है, इज्जत को खतरा होता है। जैसे अब इस वक्त हम घर के अंदर ये चार दीवारी में बैठे हैं तो सिक्योर है ना, कोई चोर नहीं हमें आके पकड़ सकता या कोई और इस तरह की खराबी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद जब हम बाहर रोड पे जाएंगे तो कितने खतरे हैं। तो पसंदीदा नहीं, औरतें तो औरतें, मर्दों के लिए भी पसंदीदा नहीं है। एक सहाबी थे उकबा बिन आमिर, तो उन्होंने अल्लाह के नबी से एक मौके पे पूछा था कि मुझे कुछ नसीहत करें, तो उसमें आपने उनको कहा था कि तेरा घर तुझे काफी रहे। यानी मर्द के लिए भी बिला जरूरत घर से बाहर जाना पसंदीदा नहीं है, मर्द को फालतू वक्त घर वालों के साथ बसर करना चाहिए। और साथ ही आपने उसमें उनको नसीहत की कि अपने गुनाहों पर रोया कर, ये भी अल्लाह को पसंद है। लेकिन सफर में जब जाओ तो किसी मकसद के साथ जाओ। नबी सल्लम थर्सडे के दिन को सफर के लिए पसंद करते थे, च्वाइस अगर होती तो जुमेरात को आप सफर का आगाज करते और रात के सफर को पसंद करते। हदीस में आता है कि रात को जमीन सुकड़ती है, यानी सफर जल्दी कवर होता है। फिर इसी तरह सफर के दौरान मकसद क्या होना चाहिए कि जिस काम के लिए जा रही हो फटाफट हो और करके वापस आ जाओ। अब आप देखिए कि जब सफर पे निकले तो काम भी था, बीच में फजर आ गई, पढ़ के अभी 2-4 घंटे 5 गुजरे। नॉर्वे में अगर आप सर्दियों में सफर कर रहे हैं, जोहर आ गई, फिर काम छोड़ेंगे। जोहर अभी पढ़ के फारिग होके मस्जिद से आके जरा जिस काम पे गए थे भावताव कर रहे होंगे, तो असर की अजान आ गई। अब असर की नमाज के लिए फिर मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, करा कराया, इतने में किसी ने कहा वाओ मियां खाना तो खा लो, खाना खाने लग गए। बीच में फिर मगरिब का वक्त हुआ तो फिर क्या होती, रात हो गई। अब जिस मकसद के लिए कोई गया वो काम नहीं हो सका। तो अल्लाह ताला ने आसानी दे दी कि तुम चलो, मैं अपना हक कम करता हूँ कि तुम नमाजों को कम कर लो। कसर मद का ऑपोजिट है, पढ़ते ना मद, मद्दे असली यानी लंबा करना, तो कसर क्या होता है, छोटा करना, कि चलो तुम दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लो। कसर के दो तरीके होते हैं, एक क्या होता है कि बस रकतें थोड़ी होती हैं, लाइक जैसे फजर की दो सुन्नत और दो फर्ज हैं, ये एज इट इज रहेगी। फजर की सुन्नत है वो है कि जो अल्लाह के नबी सल्लम सफर में भी पढ़ते थे। इसके अलावा सफर के नाते से अल्लाह के नबी सल्लम जोहर के सिर्फ दो फर्ज, असर के दो फर्ज, मगरिब के तीन फर्ज और ईशा के दो फर्ज और एक या तीन वितर, जितने भी आप पढ़ना चाहें। ये एक सहूलत है, कम पढ़ लो ताकि अपना काम करो। दूसरी सूरत क्या होती है कि नमाजों को जमा कर लो जोहर असर के साथ या असर जोहर के साथ, साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा चलता है। जोहर का वक्त हुआ तो जोहर पढ़ लें दो फर्ज, साथ ही फिर असर के भी दो पढ़ लें। इसको कहते हैं जमा तकदीम, तकदीम के कद्दम यो कद्दीमु, वक्त से पहले पढ़ लेना, यानी असर को आपने उसके वक्त से पहले पढ़ लिया। और अगर आप जोहर पे नहीं पढ़ सके किसी मजबूरी की वजह से, तो असर पे जोहर के पहले दो फर्ज और फिर असर के दो फर्ज पढ़ लीजिए, तो इसको कहते हैं जमा ताखीर, मौखर करना, पोस्टपोन करना। इसी तरह मगरिब और ईशा दोनों को भी किया जा सकता है, ठीक है, ये भी एक सहूलत मौजूद है। अगली बात यह कि सफर का ताल्लुक किससे, कितने दिन क्या है, तो पहली बात समझिए कि इस बारे में कई राय लोगों के अंदर पाई जाती हैं, 19 दिन, 4 दिन, 3 दिन। अगर आप सारी रिवायतों को जमा करें ना, तो सबसे साउंड और सिक्योर थिंग 3 दिन की, क्योंकि जो 19 दिन कहते हैं 3 तो उसमें भी आ जाते हैं ना, कोई 4 दिन कहते हैं, तो 3 तक तो सब मुत्तफिक है ना, एक राय 3 पे रुक गई बाकी आगे चली। और जो रिवायतों से हमें नबी सल्लम का हुक्म मिलता है, इसको अच्छी तरह समझ लें, और सवाल आएंगे तो वो लिख रखिए, वो उसको हम कल कर लेंगे। अब और ये आप बुक्स पूरी पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी किताबु सलात भी शुरू कराएंगे एक दो बुक्स पढ़ाने के बाद। अब आप देखिए कि सफ़र के अंदर आपकी मुसाफत, आपको अल्लाह ताला ने इसके ऊपर क्या रखा कि जहाँ जाके आपको फील होने लगे कि आप सफ़र में, शहर से, मुल्क से, मील से बराह रास्त इतना ताल्लुक नहीं है, फीलिंग्स आए आपको कि इस वक्त आप सफ़र में हैं। बस उलमाए किराम ने इसमें एक शर्त रखी कि जिस जगह आप थे और जहाँ गए इसके बीच में कुछ वीराना आए, जैसे रास्तों में आपने देखा कि खुली रोड्स होती हैं, ये भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल बनता, बाज़ दफ़ा अब वीराने नहीं भी आते, हालात ऐसे बन गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान अपने आप को कुरान और सुन्नत से जोड़ते हुए इसके ऊपर ले जाए। इसकी हिकमत देखिए कि अल्लाह को बंदे से प्यार कितना है। अब आप अगर एक जगह गए, मिसाल आप यहाँ से पाकिस्तान गए, घर से ही आप निकले 15 दिन के लिए, अब आप क्या किया, यहाँ से आप कराची उतरे, फ्रेश अप हुए, एक आधा दिन ज़रा लगा, तीसरे दिन आप वहाँ से निकले तो बाय रोड हैदराबाद आ गए, हैदराबाद गए तो वहाँ 2 दिन मिलते मिलाते आप साहिवाल आगे होते हुए आप पंजाब आए, यानी 15 दिन में आप 10 शहरों में फिरते फिराते फिर वापस कराची आ गए, पूरा वक्त आप कसर पड़ेंगे, ठीक है, समझ आइए। लेकिन आप कराची गए यहाँ से और सुबह गए और आप पूरे वहीं रहे और वहीं से आगे एक शहर में स्टेबल हो गए, तो फिर आप कसर नहीं पड़ेंगे। यदि 3 दिन तक अगर आप एक शहर में स्टॉप ओवर कर गए, स्टे कर गए, तो उसमें आप कसर पड़ेंगे। वैसे तो मुसलसल सफर में 6 महीने भी आप कर सकते हैं तो सफर कसर होगा। बाकी एक तो और मसला जी, अपना घर हो उधर ना हो, मैके वाले शहर में, बाद लोग कहते हैं ये मेरे मैको का शहर है तो यहाँ कसर नहीं होती, ये पाकिस्तानी और इंडियन मसाइल है, ऐसे कोई मसाइल उधर नहीं होते। बस जहाँ भी आप गए और जहाँ आपको मुसाफर का लगे, बस लोग इसको कबूल नहीं करते, कहते हैं लो जी हमें तो और कोई काम भी नहीं, तो फिर हम क्या करें, तो हदीस में आता है कि कसर नमाज अल्लाह का सदका है, यानी अल्लाह ने तुम्हें तोहफा दिया, कबूल करो, एक्सेप्टेड। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह की दी हुई रुख्सत को मानना भी सवाब का जरिया होता है, जबकि जिस तरह अल्लाह ताला की लगाई हुई पाबंदियों को फ़ायदा होता है। और यहाँ से आपको नमाजों की अहमियत भी पता चलती है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपके लिए ये सारी चीज़ें रखी। और ये जो इनखिफ़्तुम मैं यफ़्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू, इसका ख़ास वाक्य से ताल्लुक़ है जो उस दौर के साथ था। आज हर हालत में सफ़र की नमाज में कमी जो है वो खौफ हो के ना हो, हर सूरत में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए अगली आयत, ये दोनों आयतें बेसिकली साथ साथ ही है ना, तो इनके जो वाक़यात आते हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसके साथ देख लेते हैं। आयत 102 को देखिए, अब इसमें दूसरा इशू है सफरी के नाते से, और वो क्या है, वैजा कुन तफीहिम, और जब आप इनमें हो, कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फीहिम से मुराद के सहाबाए कराम मुसलमान उनों के बीच में हो, क्या करें, फ़ाक़मत लहुमुस सलात, तो आप इनके लिए नमाज की इकामत कहें, यानी नमाज को जमात से पढ़ने का एहतमाम करें, फिर क्या हो, फल तकुम ताइफ़तुम मिनहुम माका, तो इनमें से एक गिरोह को खड़ा होना चाहिए आपके साथ, वल याखुज़ू असलहतहुम, और चाहिए कि वो अपना असलहा लिए रखें, यानी जो उनके वेपन्स है जो डिफेंसिव किस्म के उसको लिए रखें, फ़ाइज़ा सजदू फल यकूनु मिन वराइकुम, फिर जब वो सजदा कर चुके हैं तो पीछे हो जाएं तुमसे। फ़ाइज़ा सजदू फल यकूनु मिन वराइकुम, जब वो सजदा कर चुके हैं तो तुम्हारे पीछे हो जाएं। वलताति ताइफ़तुन उख्रा लम युसल्लू फल यसल्लू माक, और आए वो दूसरा गिरोह जिन्होंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी और वो आपके साथ नमाज पढ़े। ये कैसी नमाज है जिसमें ये कुछ हो रहा है। फिर वल याखुजू हिज्रहुम व असलहतहुम, और इनको भी चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का सामान और अपना असलहा अपने साथ लेते रखें। ये क्यों ऐसी पाबंदी है? क्योंकि वद्दल्लज़ीना कफरू, चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लव तगफुलून अन असलहतिकुम, काश तुम अपने असलहे से गाफिल हो जाओ, व अमतियातिकुम, और अपने साजो सामान से, यानी सफर में बंदे के हाथ में जो सामान होता है, फिर ये क्या करें? फयमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा, ये काफिर तो इसी ताक में लगे रहते हैं कि जैसे ही तुम अपने असलहे और साजो सामान से जरा गाफिल हो तो वो तुम पर एकदम टूट पड़े। तो लिहाजा वला जुनाह अलैकुम इनकान बिकुम अजम मिम मतरिन, और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर कोई तकलीफ हो तुमको बारिश की वजह से, औ कुन तुम मर्दा, या तुम बीमार हो जाओ, अंत दऊ असलहतकुम, कि तुम अपना असलहा उतार कर रख दो, लिहाजा वह हुजू हिजरकुम, अलबत्ता अपना बचाव का सामान उठा लिया करो, यानी हथियार जो लड़ने के काम आते हैं वो ना भी लो अगर तुम, लेकिन वो ले लो जिससे कम से कम तुम अपना बचाव कर सको। कोई बर्छी है, कोई चाकू रखा हुआ है, किसी जंगली जानवर के आने की सूरत में जिससे तुम अपना दिफा कर लो, और इसमें कोई हरज नहीं। इन अल्लाह अद्दलिल काफिरीन अजाब मुहीना, यकीनन अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए जिल्लत अमेज अजाब तैयार कर रखा है। ये पूरी आयत एक खास जंग के मौके पे नाजिल हुई, गजवे गतफान, गैन तोए फा अलिफ नून। गजवे गतफान का मौका था, मुसलमान दुश्मनों के सामने थे, जोहर का वक्त हुआ, सब मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी तो कुफार को बड़ा ही अफसोस हुआ, कुछ ने जाके उनको आर दिलाया कि देखो कितना अच्छा मौका था, ये सारे जमात से नमाज पढ़ रहे थे, तुम इन पे हमला कर देते, जीत जाते। यहां से देखिए कि सहाबा और नबी मैदाने जंग में भी जमात की नमाज नहीं छोड़ते थे, नमाज छोड़ने की बात नहीं हो रही। तो आप उन मुसलमानों का क्या कहते हैं जो आम हालात में जमात तो छोड़िए नमाज ही नहीं पढ़ते? बरकत आएगी हमारे रिस्क में, सेहत में, वक्त में। खैर, दूसरे किसी काफिर ने का फिक्र ना करो, अभी एक ऐसी नमाज का वक्त आ रहा है जो इन मुसलमानों को अपनी औलादों से भी ज्यादा प्यारी है, असर का वक्त। ये उनके खिलाफ ना का ठीक है, असर पे जब ये सब पढ़ेंगे ना जमात से नमाज, तो हम इन पर हमला कर देंगे। अल्लाह के नबी को तो ना पता चलता, लेकिन अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने अगली नमाज से पहले ये आयात नाजिल करके अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ने का ये तरीका बता दिया जो भी आपने सुना। इसको सलातुल खौफ कहते हैं। 7-8 से ज्यादा मुख्तलिफ तरीके हमें अहदीस से भी मिलते हैं। किसी में नबी सल्लम अगर इमाम है तो पीछे वाले दो दो करके चार पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी दो होंगी। किसी में एक सफ, जैसे अभी आपने देखा कि एक सफ आपके साथ पढ़े। अब इसका तरीका आपके मेरे लिए कोई इतना इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी इस चीज के हालात नहीं बनते, ना खासतौर पर औरतों के लिए। लेकिन एहतमाम देखिए कितना है कि नबी खड़े नमाज पढ़ा रहे हैं, पूरी फौज दो हिस्सों में बट गई, आधे लोग नबी के साथ एक रकत पढ़ेंगे, एक रकत पढ़ के बाद में जाके वो फिर अपनी अपनी पोजीशनों पे खड़े हो गए, तो दूसरा गिरोह पीछे आएगा, नबी उनको फिर एक रकत पढ़ाएंगे, नबी की दो हो गई, उनकी एक हो गई, फिर ये दूसरा गिरोह एक रकत पढ़ के वापस चला जाएगा अपनी अपनी जगहों पे, तो वो पहला जिन्होंने एक रकत पढ़ी थी वो अल्लाह के नबी के साथ आके दूसरी रकत पढ़ेंगे, जब ये दूसरी पढ़ के चले जाएंगे तो वो आएंगे और नबी के साथ दूसरी रकत पूरी करके सलाम फेरेंगे, तो आम लोगों की दो दो हो गई, अल्लाह के नबी की 4 रकतें हो गई। ये तरीका ये हमने भी पढ़ा, एहतमाम देखिए। क्या ये सलातुल खौफ हम अपने बेटों और बच्चों और शोहरों और भाइयों तक नहीं बचा सकते? कितना आसान तक आ जाता है ना ही पढ़ो, लो अल्लाह के रास्ते में निकल आए, अब नमाजें पढ़ोगे? बस दफा हमारा ये एहसान जतलाने वाला तरीका होता है, नमाज तो मैंने और आपने अपने लिए पढ़नी है, और सहाबा को एनर्जी मिल रही होती थी उस नमाज में, जिस रब के नाम पे लड़ने आए हैं उसको याद तो कर लो। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अब जो नमाज पढ़ ली है तो अब इसके बाद अल्लाह को भूल ना जाया करो, आयत 103, फ़ैज़ा कदई तुम उसला तफस्कुरुल्लाह क़ियामं व क़ुऊदा। फिर जब तुम इस तरीके से नमाज अदा कर लो तो फिर जिक्र करो अल्लाह का खड़े हुए बैठे हुए, व अला जुनूबिकुम और लेटे हुए। ये क्या बात है, नमाज पढ़ने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करो। इधर नमाज के बाद के अज़कार की तरफ इशारा है। बाज़ लोग कहते हैं अब नमाज तो पढ़ ली और क्या करूं, तो अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद भी जिक्र करो, मुराद ये कि नमाजों के साथ जाए नमाज तय ना कर दो। ये नमाज तुम्हारे साथ चलती फिरती, तुम्हारे अमल से दिखे कि तुम्हें अल्लाह याद है। ऐसा ना हो कि तुम नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की नाफरमानी के काम कर दो, चलते फिरते हर वक्त जिक्र करते रहो, अल्लाह को याद करो। सूरत जुमा में भी आता है, फइजा कुदियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्दि वब्तहू मिन फ़ज़लिल्लाहि वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि अल्लाह को याद करो और उसका जिक्र करो नमाज पढ़ने के बाद भी। हाँ फइज़त मानन तुम, हाँ जब तुम्हें इत्मीनान मिल जाए, पीसफुल हालात हो जाए, यानी जंग के और ये हालात खत्म हो, तब ये नहीं कि इस तरह नमाज में इतनी हरकत कर रहे थे तो आदत ही बना लो कि आम नमाजों में भी इस तरह करना है, बल्कि आम हालात में फिर फाकीमुस्सला, फिर नमाज को पूरे आदाब और उसकी शरायत के साथ पूरा करो। अब ये नहीं कि तुम्हारी नमाज खौफ की हो जाए, कैसे शादी दुल्हन कैसे नमाज पढ़ो, बीमारों की तरह। आप देखिए कि बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो नमाज कैसी होती है, कपड़े ना खराब हो जाए, बोझल पड़ती है ना, मेकअप खराब होने का डर। यानी आपको हैरत होगी कि दुल्हन को पलके लगा देते हैं और कहते हैं ये सजदा कैसे करें, इसकी पलके मुड़ जाएंगी, और वो सलातुल खौफ पढ़ रही होती है, दूसरों को बिठा के तयम्मुम कर ले। नहीं, इत्मीनान है, शादी से ज्यादा इत्मीनान कब आएगा जब इतना कुछ मिल रहा है। तो हम बाद बाद दुल्हन की नमाज को सलातुल खौफ बना देते हैं, तो ये जंगों की बातें। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नस सलात कानतल मोमिनीन किताब मौकूदा, यकीन नमाज ईमान वालों पर वक्त की पाबंदी के साथ नाजिल की गई है। ये नहीं कि सारी रात को पढ़ लें, चलो अब दुल्हन को आज ना पढ़े, ये शादी के बाद एक दिन बाद जाके सारी इकट्ठी कर ले। इससे पता चलता है कि नमाज अपने वक्त पर है। नमाजों के वक्त क्या हैं? जब मेराज के मौके पे नमाज फर्ज हुई तो अगले दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और नबी सल्लम को नमाजें पढ़ाई। कैसे पढ़ाई? पहले दिन फजर, तुलुए फजर, बिल्कुल फजर का एक थोड़ी सी रोशनी होती है ना, उस वक्त पढ़ाई, फिर चले गए। फिर जोहर के लिए सूरज के ढलने के फौरन बाद आए, जब यानी बिल्कुल अभी सूरज का ढलना शुरू हुआ तब पढ़ाई। तीसरी नमाज असर तब पढ़ाई जब इंसान के जिस कद का साया जो है ना उसके बराबर हो जाता है, ये सूरज के साथ इसका ताल्लुक है। मगरिब सूरज गुरूब होते ही पढ़ाई, और ईशा जो थी वो सुर्खी जो थी शफक की उसके खत्म होते ही पढ़ाई, फिर चले गए। अगले दिन फिर आए और अब फजर कब पढ़ाई? सूरज निकलने से बिल्कुल पहले के वक्त पे। जोहर कब पढ़ाई? जब कल असर पढ़ी थी। असर कब पढ़ाई? जब कल मगरिब पढ़ाई थी। और मगरिब कब पढ़ाई? बाज कहते हैं उसी वक्त पे पढ़ाई, बाज कहते हैं कि शफक की लाली जाने तक, और ईशा जो थी वो आधी रात के वक्त पढ़ाई। और फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए नमाजें इन औकात के बीच में रखी हैं, पहले दिन इब्तदाई वक्त और दूसरे दिन इंतहाई वक्त। अल्लाह के दीन की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि एक लाइन खींच के नहीं कह दिया कि इस 15 मिनट में पढ़नी है तो पढ़ लो, करना तो यही है, किताब मौकूता, वक्त मुकर्रर पे, लेकिन मजबूरियों की रियायत करते हुए बीच में नमाजों में टाइम दे दिया। और आज उम्मत का हाल क्या, वो कहते हैं अभी तो जी हमारी नमाज का वक्त ही नहीं हुआ, ये तो जी वहाबियों की नमाज है। ये जो आज आपको पाकिस्तान में नमाजों का फर्क दिखता है ना मस्जिदों में, कुछ मस्जिदों में असर हो गई है, कुछ कहते हैं अभी 1 घंटे बाद है, वो ये फर्क है। जो असर फौरी वक्त पे पढ़ते हैं ना वो असल वक्त पे पढ़ते हैं, और जो बिल्कुल आखिरी वक्त पे पढ़ते हैं ना वो समझो उसकी इंतहाई वक्त पे पढ़ते हैं। हदीस में आता है कि सबसे भारी नमाज मुनाफिक के ऊपर कौन सी होती है? फजर की और ईशा की। और असर के लिए वो वक्त का इंतजार करता रहता है, और जब सूरज बिल्कुल डूबने के करीब होता है तो उठ के नमाज पढ़ता है। तो नमाज हमेशा उसके वक्त पे पढ़े। और आखिरी आयत देखिए, कुछ बातें इसकी रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे बाद में। आयत 104, वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम, और इस दुश्मन गिरोह का पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ। यानी दुश्मन के सामने थे तो नमाजें पढ़नी ना छोड़ो, तो अब नमाज में पढ़ के ये ना हो जाए कि दुश्मन का पीछा छोड़ दो, कि नमाजों में इतने लंबा क्याम करो। इन तकून तालमून नफा इन्नहुम यालमून, अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो तुम्हारी तरह उनको भी तो पहुंचती है, कमा तालमून जैसे तुम, यानी चोट तो उनको भी लगती है। अंदाज देखिए किस पे प्यार आ रहा है, दुश्मन पे। क्या मुसलमानों, तुम मैदाने जंग में आ गए हो तो तुम्हें तीर लगता है तो तकलीफ होती है, तो इंसान होने के नाते तीर लगने की तकलीफ काफिर को भी तो होगी, लेकिन एक फर्क है जो इस मोमिन को ठंडा कर देता है, सीना ठंडा हो जाता है। वो क्या कि वह तरजून अमिन अल्लाह मा ला यरजून, तुम तो अल्लाह से ऐसी उम्मीदें रखते हो जैसी उम्मीदें वो नहीं रखते हैं। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। क्या बता दिया इस बात में कि तुम किस तरीके से अल्लाह सुबहान ताला के रास्ते में लड़ते हो, और अल्लाह ताला तुम्हें उसमें तकलीफ के बाद जन्नत की उम्मीद दिलाता है। लेकिन सोचो वो काफिर कितना बदनसीब है कि इधर भी तीर लगते हैं, कांटे चुभते हैं, लेकिन वहां जन्नत की आस नहीं। तो यहां से इंसान को अपनी कोशिशों का रुख देखने का मौका मिलता है कि अगर आज हमें अल्लाह के रास्ते में कुछ बैठना पड़ता है, मिसाल है कि आप मुसलसल बैठे थक गए तो क्या हुआ, लोग भी तो बैठते हैं अपने दुनिया के कामों के लिए। 3 घंटे मुसलसल लोग फिल्म देखने के लिए बैठ सकते हैं, तो तुम 1 घंटा 55 मिनट तफसीर सुनने के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? तुम्हें तो इसके बाद एक एक लफ्ज के अजर की उम्मीद है, उनको तो कोई इस पे अल्लाह से अजर की उम्मीद भी नहीं। तो आज के पूरे सबक के अंदर जो मैसेज है वो ये है, कायदून से मुजाहिदून बन जाओ। इस रास्ते में हिजरत करनी पड़े तो कर दो, और इस रास्ते में अगर कुछ कुर्बानियां देनी पड़े दे दो, अल्लाह ताला इस पे कभी भी तुम्हारे अजर को जाया नहीं करेगा। जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।